حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چنے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فائدے کی باتیں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری زیدہ مجدہو انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے پروگرام میں شامل رہیں گے۔ اور یہاں ہم آپ کو ایک جو ہے وہ بات بتاتے چلتے ہیں، ایک یوں بولی کہ سٹوری جو ہے یہ سناتے چلتے ہیں۔ کسی شخص کی کسی نے دعوت کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دو کیڑے تھے، ایک بھورا تھا اور ایک دوسرا کیڑا تھا جو مٹی سے گھر بناتا ہے، ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ تو بھورا یہ وہ کیڑا ہوتا ہے، یہ یوں بولیے کہ بگز میں سے ہے کہ جو وہاں رہتا ہے، گلشن میں رہتا ہے، جہاں پھول ہوتے ہیں، جہاں پھول کھلتے ہیں، اس جگہ پر یہ رہتا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنے اس دوست سے کہا کہ آپ آئیں اور میں جو ہے وہ کبھی آپ کو اپنا گھر دکھاؤں، اپنا علاقہ دکھاؤں، جہاں میں رہتا ہوں آپ دیکھیے کیسے وہاں پھول کھلتے ہیں، کیسی وہاں خوشبوئیں مہکتی ہیں، کیسا ایک دیدنی منظر ہوتا ہے اور کس طرح کا ایک خوشنما منظر ہوتا ہے جو آنکھوں کو جو ہے وہ تازگی دیتا ہے، دل کو جو ہے وہ ایک راحت دیتا ہے، اور کیا زبردست ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، آپ میرے یہاں آئیے تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو چنانچہ اس نے اس کی دعوت قبول کی اور یہ اس کی دعوت پر وہاں پہنچا، اور وہاں جا کر کے اس نے طرح طرح کے پھول دیکھے جو کھل رہے ہیں، اور ان میں سے جناب پیاری پیاری مہک جو ہے وہ آ رہی ہے، پیاری پیاری خوشبوئیں جو ہے وہ اٹھ رہی ہیں، بڑا ایک خوبصورت سا منظر ہے، لیکن اسے مزہ نہیں آیا، اسے کچھ اچھا نہیں لگا، نہ اسے پھولوں کی خوشنمائی دیکھ کر کے کوئی تازگی ملی، نہ اسے پھولوں کی خوشبو سونگھ کر کوئی راحت ملی، اور نہ ہی اسے گلستان کا ایک خوبصورت منظر دیکھ کر طبیعت کے اندر کوئی نشاط اور کوئی تازگی جو ہے پیدا ہوئی۔ بھورے نے اس کو محسوس کر لیا کہ بھائی جان آئے تو ہیں لیکن ان کو کچھ اچھا لگا نہیں ہے، فرینڈ میرا میرے یہاں آیا تو ہے لیکن اسے میرا گھر بھایا نہیں ہے، یہ اسے اچھا لگا نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا تو اس کیڑے نے بھورے کو کہا کہ آپ بھی کبھی میرے یہاں تشریف لائیں اور میں جو ہے وہ آپ کو اپنا علاقہ دکھاؤں، اپنا محلہ دکھاؤں، اپنا گھر دکھاؤں، اپنی برادری دکھاؤں، کس طریقے سے جو ہے ہم رہتے ہیں، کس طریقے سے میں مٹی جو ہے وہ لے کر کے آتا ہوں اور کس طریقے سے اسے ایک خوبصورت سا جو ہے وہ گھر بناتا ہوں، اور پھر اپنے بچوں کے رزق کے انتظام کے لیے میں کس طریقے سے اس کے اندر ایک یوں بولیے کہ مکڑی کو اس کے اندر بند کرتا ہوں، اور کیا سلسلہ کار ہوتا ہے، یہ سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چنانچہ بھورا جو گلشن میں رہتا ہے، پھولوں پر جو ہے وہ اڑتا ہے اور خوشبوئیں سونگھتا ہے، یہ اس کی دعوت پر چلا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ مٹی کی گولیاں بنا بنا کر مختلف جگہوں پر سجائی ہوئی تھیں، مختلف سائز کی وہ مٹی کی گولیاں تھیں، چونکہ یہ مٹی والا کیڑا تھا اور یہی کام یہ کرتا تھا۔ تو بھورا بات سمجھ گیا، تو بھورے نے اسے کہا کہ جب تک آپ یہ مٹی کی گولی اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے، آپ کو پھولوں کی خوشنمائی کا اثر نہیں ہوگا، آپ کے ذہن پر ان پھولوں کی خوشبو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور آپ کو وہ دیدہ زیب رنگ ہے یہ اچھا بھی نہیں لگے گا۔ تو بعض اوقات انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پھنس جاتی ہے اور آدمی کہیں نہ کہیں سٹک ہو جاتا ہے، کوئی بات ایسی جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے کہ اسے خوشیاں خوشیاں نہیں لگتی، اسے لوگ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے لوگ یہ بھی اس کو جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے، और अपने ही एक खोल के अंदर, अपने ही हिसार के अंदर खुद ही आदमी रेशम के कीड़े की तरह बंद हो जाता है, और फिर बिलाखिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है जब फेस करता है तो माशरे के अंदर तन्हा रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आफियत और सलामती अता फरमाए, और अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम हमें हर तरह के शर से महफूज व मामून फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दुरुस्त राह का इंतखाब करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबा, या अल्लाह हमें हक हक करके दिखा और हमें इसकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा, अरिनल बातिला बातिलम वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, और या अल्लाह जो बातिल है ये हमें बातिल करके दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। तो बाज़ औक़ात बुरे दोस्त होते हैं तो वो क्या करते हैं, बुरे काम को ऐसा मुज़य्यन करके और ऐसा खूबसूरत करके वो दिखा रहे होते हैं कि बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें आफियत और सलामती का अता फरमाए। ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर बसने वाले मुख्तलिफ अफराद हैं, उनकी मुख्तलिफ सोचें हैं, उनकी सोचों के साथ उनकी ज़बान है, उनके दिल के साथ उनकी जो बोलिए कि ज़बान की तर्जुमानी है, जो चाहते हैं फ़लसफ़ा बताते हैं, जो चाहते हैं अंदाज सिखाते हैं, जो चाहते हैं बातें टीच करते हैं, जो चाहते हैं मुख्तलिफ तरह के पोर्ट्रेट जो है ये ड्रॉ करते हैं। लेकिन अक्लमंद और समझदार बंदा वही है जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी के अंदर सारी चीज़ों को देखे और इसी के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ता चला जाए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है ये दीन इस्लाम है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने इंशाअल्लाह निगरान शुरा से जो बात करनी है उसमें हमने एक मौजू जो है वो रखा है कि ख़त्म होती ख़ानदानी रिवायात। माशाल्लाह करीम आप निगरान शुरा की जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए पहले निगरान शुरा से ये जानते हैं कहाँ हैं आप।
मैं इस वक्त नॉर्वे के शहर ओस्लो में हूँ, और ओस्लो में फैजान मदीना के साथ हमारा ये ऑफिस मकतब बना हुआ है।
अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। दो तरह के लोग हमने देखे हैं, जैसे आपके साथ सफ़र किया है खलीफा अमीरुल सुन्नत के साथ सफ़र किया है, और आपने यकीनन अमीरुल सुन्नत के साथ सफ़र कर रखे हैं। आपने भी ये अंदाज़ देखा होगा कि नमाज का टाइम जैसे ही आ जाए तो नमाज जब पहले पढ़ ली जाए। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा नमाज पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो ये दोनों इन अंदाज़ों को आप किस तरह देखते हैं? आप
सफ़र में कभी कोई भी अपसेट हो सकता है, लिहाजा मेरी तो यही दरख्वास्त होगी कि अगर कहीं आप सफ़र में कंटिन्यू चल रहे हैं तो अगर कहीं जमात का एहतमाम है तो ज़्यादा भी जमात का एहतमाम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये है कि अपनी नमाज का वक्त शुरू हो तो नमाज की तरकीब फौरन कर लेनी चाहिए। उसके लिए कि वजू की तैयारी रखें, बावजू रहने की कोशिश करें मैक्सिमम, तो भी इसमें काफ़ी फवायद हासिल हो जाते हैं। तो नमाज का एहतमाम, हम ये परेशानी तो उस वक्त हुई थी कि जब मुझे चलना था अभी पिछले दिनों यहाँ आना था, कहाँ गए थे हम लोग, जर्मनी से हम लोग चले थे, और हमें रास्ते में बाई ट्रेन सफर था, और बाई ट्रेन सफर के अंदर भी ये था कि वो नमाजों का भी सारा ख्याल रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम असर पर के चले, रास्ते में जहाँ ट्रेन का थोड़ा ब्रेक हुआ वहाँ हमने मगरिब अदा की, और जहाँ हमने पहुँचना था वहां पहुंचकर हमने असर भी अदा की। हमने आना था जर्मनी में ही हम्बर्ग से फ्रैंकफर्ट आना था। हाँ ये था, नमाज से वक्त पर हो जाए कितनी बड़ी नियमत है। नमाज वक्त पर हो जाए, नमाज वक्त पर हो जाए, नमाज वक्त पर हो जाए,
माशाल्लाह
जी सलमान
भाई, अल्लाह पाक हमें भी ये नमाज पढ़ने की और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक और सारत नसीब फरमाए, बाजमात नमाज अदा करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ऐसे आप माशाल्लाह अभी कुछ दिन पहले आपका यूके का सफ़र था, वहाँ पर भी मुख्तलिफ शहरों में आप जो है वो मैनचेस्टर भी गए, दीगर ब्रेडफोर्ड में भी और दीगर इलाकों में भी आपका जो है वो जाना हुआ। अभी आप जो है वो यूरोप के सफ़र पर हैं, जर्मनी में आपने ट्रेवल किया, बर्लिन में माशाल्लाह सुन्नतों भरा एक ज़बरदस्त इज्तिमा किया। आप वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ तरह की कम्यूनिटी से मिलते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं इस सफ़र के अंदर और क्या आपके महसूसात हैं? मैं चाहूँगा आप ये भी बताइए, लोग बाज़ औक़ात ये जैसे हम अपने यहाँ की अगर यहाँ से बात करें तो यूँ हो रहा है फैमिली में से एक बंदा बाहर चला जाएगा तो मामला जो है वो सुखी हो जाएगा, जो है ना वो मामलात बेहतर हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाएगा, घर जो है बेहतरीन हो जाएगा, फिर लाखों रुपया जो है वो लगाते हैं, फिर भेजते हैं 35-35 लाख रुपए तक जो है वो दे देते हैं, 40-40 लाख रुपए लगाते हैं। अच्छा, जो ये नहीं लगाते वो कोई और अंदाज जो है वो इख्तियार करते हैं, डंकी लगवाते हैं और बिल्कुल जान जोखों में डाल के बच्चे को जो है वो भेज देते हैं। या फिर वहाँ फ़ोन भी आ जाता है, अभी हम जो है वो पहुँच गए हैं, कुछ के हालात बदलते हैं, कुछ के नहीं बदलते। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन हैं इस सारे मामलात पर, क्या कहते हैं आप?
हो सकता है कि जिनके घरों से ये गए हैं उनके घरों के हालात फाइनेंशियली तौर पर शायद बेहतर हो जाएं। हमारे यहाँ तो फाइनेंशियली तौर पर बेहतर होना ही हालात को बेहतर कहने कहते हैं, हालांकि वह नमाज एक हो या ना हो, इबादत हो या ना हो, कुरान की तिलावत हो या ना हो, झूठ बोला जा रहा हो, धोखा दिया जा रहा हो, फिल्में ड्रामे गाने बाजों का दौर दौरा हो, मगर चूंकि पैसे आ गए हैं, अब रहना करना सहना कपड़े वगैरह ख्वाहिशें फरमाइशें सब पूरी हो रही है, तो अब होया कि हालात हमारे अच्छे हो गए। तो हमारे हालात के अच्छे होने का मुराद जनरली तौर पर ये लिया जाता है कि यार आजकल ये बड़ा खुशहाल है, इसको बड़ा करम हो गया है, भले एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, पहले नमाज पढ़ता था, लेकिन जब से इसका कारोबार अच्छा हुआ है, जब से इसका पैसा इसको आना शुरू हुआ है, इसकी नमाज से चली गई है, अब जमातें चली गई हैं, ये पहले जो तिलावत करता था वो भी इससे चला गया है, हालात इस पर अच्छे हो गए क्योंकि इसको बड़ी करम हो, इसको बहुत करम हो गया है, वो हमारे पैसा मिलना ही करम की बात है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कह रहे हैं कि घर के हालात अच्छे हो गए तो घर के हालात वालों के अच्छे हो जाते हैं, ये हर घर की कहानी नहीं है, मैं जिन जिन घरों की अब उनके हिसाब से अर्ज कर रहा हूं। मगर जो आपने मुझे सवाल किया उसके तहत अगर मैं अर्ज करूं तो ये तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि फाइनेंशियल उस घर की हालात अच्छी होगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि जो बैरून मुल्क आया उसकी हालात अच्छी हो। सलमान मदनी मैं उनसे भी मिला हूं जिनके 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल यहाँ गुजर गए मगर ये आज भी यहाँ पर मकरूज हैं, इनके यहाँ पर कर्ज हैं। और फेसबुक पे जब मैंने लाइव किया है तो उस वक्त मैंने एक बात की कि यहाँ के लोग सब तो नहीं कहेंगे, हर एक की अपनी अपनी जुदा जुदा सोच होती है, अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, तो एक मेंटेलिटी एक सोच ये है कि ये मीठी जेल है। मैंने को कहा कि यार इतने परेशान हो, इतने दुखी हो, इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतना कंप्रोमाइज किया, लेकिन फाइनली हाथ में क्या है आपके, तो कह सकते हाथ में कुछ नहीं है। मैं कहा फिर क्यों हो यहां पर, क्या मुझे इमरान मीठी जेल है, बस निकल नहीं सकते यहां से, एक जिंदगी का एक अंदाज ऐसा हो गया। तो हर एक यहां पर सुखी हो ना सलमान अतारी, हर कोई यहां सुखी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीवी बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर, खानदान से दूर, अपने कल्चर से दूर कैसे बंदा सुखी रह सकता। फिर इन ममालिक में जहां से मैं उमूमन ट्रेवल जो आप कह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को अगर आप एड्रेस कर लें तो इन ममालिक के अंदर बेसिकली लोग एक तो फैमिली ना होने की वजह से यानी कि खानदान रिश्तेदार नहीं होते परेशान होते, दूसरा बच्चों के ताल्लुक से परेशान, वो भी वही जिनको परेशानी है कि बच्चा ये हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा, तो इस हवाले से परेशानी इनको रहती
बाहर है। जो रहते हैं उन्हें उमूमन फरमाइशों का भी सामना करना पड़ता है, खुद बंदा किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है, खुद क्या कर रहा है, कैसे उसका रहना है, कैसे उसका सहना है, क्या उसका खाना है, क्या उसका पीना है, क्या उसका पहनावा है, यानी ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। फिर उसको जो है वापस भी आना है और फिर वापस आ करके किस तरीके से उसको जो है वो रहना है और वो बजट भी क्या करना है, मैनेज करना है, तो ये बहुत सारा बर्डन होता है एक बंदे के अंदर और बंदा जो है वो उसको लेकर के चल रहा होता है। फिर इसमें जब मजीद ख्वाहिशात का और फरमाइशों का जब यूं बोलिए कि तड़का लगता है तो फिर ये मामला जिस तरह दाल पर तड़का लगता है दाल मजे की बन जाती है, लेकिन जब ये ज़िंदगी में फरमाइशों का तड़का जब लगता है तो ये वो तड़का होता है कि जो ज़िंदगी के मज़े को ख़त्म कर देता है और ऐसा बंदे के ऊपर एक बोझ जो है वो डाल देता है कि बंदा उस बोझ के नीचे जो है ये दब जाता है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए। तो ये ख्वाहिशात और जो फरमाइशों का मामला है बिलखसूस जिसने बैरून मुल्क से जो है वो आना हो इसके ऊपर भी जो है वो रोक लगाने की हाजत है और इसको भी समझने की हाजत है, हमारे लिए नहीं लेकर आए, उसके लिए नहीं लेकर आए, फलां के लिए लेकर आए, अपनी बीवी के लिए लेकर आए, बहनों के लिए नहीं लेकर आए, अपने जो है वो फलां के लिए लेकर आ गए तो फलां के लिए जो है वो नहीं लेकर के आए। इस तरह की गुफ्तगू भी बाज़ औक़ात क्या करती है, रिश्तों में तलखियाँ पैदा कर देती है और अच्छे खासे माहौल को जो है वो ख़राब कर देती है। और फिर जिसने आना होता है उसके ऊपर जो एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है ये साथ में क्या होता है, ये प्लस होता है। तो ये बातें हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है। निगरान शुरा ने जैसे इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं है कि जो बैरून मुल्क में रह रहे हैं और जो वहाँ पर गए हैं ये सारे मतलब वेल ऑफ हैं, ये सारे अप टू डेट हैं और सब बड़ी यूँ बोलिए कि लैविश लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और मुझे अभी कुछ दिन पहले एक यूँ बोलिए कि गालिबन रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद था, तो वहाँ किसी की कही हुई बात जो है वो मेरे कानों में अभी जो है वो गूंज रही है और जहन में जो है वो आ रही है कि बंदा जो बैरून मुल्क में ज़िंदगी गुजार कर आता है, जब वो अपने ख़ानदान में आता है तो फिर चूँकि उसको रहने का सहने का एक अलग ही उसका अंदाज़ जो है वो बन चुका होता है और वो एक अलग ही अंदाज़ में जो है वो ढल चुका होता है, तो फिर जब वो वापस आता है फैमिली सिस्टम के अंदर जब वो आता है तो फिर वो चल नहीं पाता। वो अपने लिए भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है, फिर अपने घर वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। और बाज़ लोग ऐसे लोग जो अपना यूँ बोलिए कि सिस्टम बेहतर नहीं बनाते और जो उनकी अर्निंग है उसी के ऊपर जो है वो महदूद रहते हैं, तो जब वो वापस अपने जो है वो कंट्री में आते हैं, अपने मुल्क में आते हैं, तो फिर वो हैंड टू माउथ होकर के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हुनर तो कोई आता नहीं है और फिर मजदूरी ही करते थे, वहाँ करते थे तो मामला और था, अब यहाँ पर आए तो यहाँ मजदूरी के अलावा चूँकि कोई हुनर भी नहीं है तो ये ज़िंदगी जो है ये टफ़ और मुश्किल हो जाती है। ऐसा जो ख़ानदानी रिवायात ख़त्म हो रही हैं और एक इंडिविजुअल और एक इनफरादी ज़िंदगी का जो एक फ़लसफ़ा है ये पेनिट्रेट जो है वो कर रहा है, इसके ऊपर आपकी जो है वो क्या राय है कि बंदे को ख़ानदानी निज़ाम के साथ रहने में किन किन बेनिफिट्स का सामना करना पड़ता है और जब वो इनफरादी ज़िंदगी जो है वो अपनी इख्तियार करता है, ख़ानदान से कट गया है, रिश्तों से कट गया है, बिल्कुल अलग थलग होकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इन दोनों चीज़ों को आप जो है वो किस तरह देखते हैं, बेनिफिट्स के एतबार से और इसके नुकसान के एतबार से?
देखिए, अलग थलग रहने वालों के अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको एक तादाद दुनिया भर में से मिलेगी जो अलग रहने की वजह से जो डिप्रेशन, एंजाइटी और फिर आगे जाकर वो सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ चले जाते हैं, ये पूरा एक डेटा है उसका। तो खानदान और रिश्तेदारी, मिलना, सिले रहमी, आपस में ताल्लुक को कायम रखना, खुशी गमी में शिरकत करना, हाल अहवाल लेना, ये आपको ताजगी देता है, आपको जिंदगी देता है, आपको खुशी देता है। आप अगर गम ज़दा हैं, किसी के गम को दूर करते हैं तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके गमों को दूर कर देता है। आप खुश हैं और खुशी में अगर आप किसी को खुश करते हैं तो आपकी खुशी को अल्लाह पाक और बरकतें नसीब कर देता है। तो ये तो एक जिंदगी, एक निज़ाम है, हमारे पूरे सोसाइटी एक निज़ाम है, जनाजा है, शादी है, निकाह है, खुशी है, गमियाँ मिलते हैं, तो ख़ानदान तो और इंसान को क्लोज करता है। तो जो ख़ानदानी निज़ाम को या फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते, जैसे कि दुनिया भर में हो रहा है, तो वो डेफिनेटली वो अपने आप को मायूसी और एनजाइटी और डिप्रेशन किस उसमें ले जाएंगे और वो समझेंगे कोई हमें देखने पूछने वाला नहीं है। हकीकत ये है कि वो खुद ही अपने आप को ऑफलाइन करके बैठे हुए हैं। तो खानदान के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो मेल मिलाप के साथ ही जीना चाहिए, ये तो इस पर कोई दो राय नहीं है। सिले रेमी करनी चाहिए, मिलाप होना चाहिए, मिलना चाहिए।
ऐसे जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है और इतनी यू बोलिए कि फास्ट हो गई है, बंदा दो दो जो है वो जॉब्स कर रहा है, नौकरियां जो है वो कर रहा है और इस तरह उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, प्रेशर है, बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर है, अपना घर बनाने का प्रेशर है, फिर अपने आप का जो माशरे में एक स्टेटस है उसको जो है वो बेहतर बनाने का एक प्रेशर है, यानी ये फाइनेंशियल प्रेशर ये बंदे के ऊपर इतना जो है ये आ चुका है जिसकी बिना पर वो मजीद जो अर्निंग के लिए, कमाने के लिए कोशिशें जो है वो कर रहा है, तो इतने मसरूफ ज़िंदगी के स्केजुअल में से ये रिश्तों के लिए वक्त कैसे निकालेगा, यारतें करने जो है वो कैसे जाएगा, मौत मैयत में जो है वो जाना तो चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन लोग उसमें भी बहुत कम जाते हैं, कोशिश करते हैं फोन पे ही बात जो है वो चला लें, क्या कहते हैं
आप? ये आज तो नहीं है, घर पहले भी लोगों ने बनाया है, शादियां पहले भी लोगों ने की है, फाइनेंशियली इश्यूज पहले भी लोगों के रहे हैं, बीमारियों का इलाज पहले भी लोगों ने किया है, बच्चे पहले भी लोगों ने बड़े किए हैं, मगर वो खानदान को समझते थे, रिश्तों को समझते थे। और क्या पता कि खानदान और रिश्तों को समझना इनके टाइमिंग में बरकत लाता था, इनके रिस्क में बरकत लाता था, इनके मामलात में बरकत लाता था। अब वो एक कॉन्सेप्ट तब्दील हो गया है, और ये जो आप कह रहे हैं यही तकरीबन आम लोग इस तरह की डिस्कशन करते हैं। लेकिन आपको ये देखें कि जब आपकी मसरूफियत इतनी बढ़ गई तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी तो आपके हाथ में आ चुका है। पहले तो आपके हाथ में मोबाइल तो नहीं था, पहले तो ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आप आए दिन रब्ता कर लेते थे। अब तो आप दिन में 10-10 दफा रब्ता कर सकते हैं, दिन में 2-2 दफा रब्ता कर सकते हैं, हाल अहवाल ले सकते हैं, खुशी गमी के तौर पर आप उनसे कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट में उसके रह सकते हैं। और फिर मतलब लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है सलमान भाई, ऐसा तो नहीं है। और रोजाना कोई ना रोजाना को खुशी का मौका होता है, ना रोजाना गम का मौका होता है। एक आपकी पर्सनल लाइफ भी तो चली रही होती है, घर पर भी तो आप रोज आ ही रहे होते हैं, कहीं खुदा ना खासा कभी कोई वाकिया हो गया, कोई इंतकाल हो गया, या कोई ऐसी खुदा ना खासा कोई बड़ी आफत या परेशानी आ गई, तो बंदा आधा घंटा 2 घंटा निकाल ही लेता है। अगर आप अब किसी के लिए आपका वक्त नहीं है तो भी डरे उस घड़ी से कि जब खुदा ना खासा आप पर कोई वक्त आएगा तो लोगों के पास आपके लिए भी वक्त नहीं होगा। ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अल्लाह कह रहे आप मेरी बात इसको सीरियस लें, कि जो नहीं है लोगों के साथ वाबस्ता तो लोग उनके साथ भी वाबस्ता नहीं है, जो लोगों में है ही नहीं तो वो कभी है या वो भी दुनिया में है या नहीं है लोगों को इसका भी पता नहीं है। आप आएंगे तो आपको कोई नोटिस करेगा ना, अब जब आते नहीं है, मिलते नहीं है, जाते नहीं, आते नहीं, तो क्या बंदा किसी का कोई नोटिस करेगा सलमान भाई? तो ये तो बात समझ में नहीं आती कि इतनी मसरूफियत है कि टाइमिंग ही नहीं है। अब हॉस्पिटल में कोई खुदा ना खास एडमिट है तो उसके पास आधा घंटा 15 मिनट जाने में क्या प्रॉब्लम है, या कोई जनाजा हो गया तो जनाजे में तो जाना ही चाहिए, ये तो हमें तरगीबात इसमें शामिल है। आप देखिए इस्लाम व दीन कितनी खूबसूरत सोसाइटी की और फैमिली को और उसको इस्टेब्लिश करता है। लेकिन ये बात आपकी जो जो कही है वो वही कही है जो माशरे में चल रही है, जो लोग बोल रहे हैं, मगर इस पर जहन बन नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में कोई भी किसी से रबते में नहीं हो, इसी माशरे में गुर्बत में भी या किसी भी आजमाइश में भी लोग रबते में तो है ना, भाई भाई से रबते में, बहन बहन से रबते में है, भाई बहनों के आपस में रबते हैं, रिश्तेदारों के रबते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी के रबते में है ही नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी रबते में, अमीर से अमीर आदमी भी रबते में, बिजी से बिजी आदमी भी रबते। बल्कि दुनिया में भी लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अभी मैं बैठा था, हमारा इस वक्त डेनमार्क भी है, स्वीडन भी है, नॉर्वे भी है, इटली भी है, मेरे साथ फ्रांस भी इस वक्त माशाल्लाह मौजूद है, इन मुल्कों की नुमाइंदगी है हमारे इस वक्त जब मैं बैठा हुआ हूँ। तो कहते ये भी है कि यार टाइम नहीं है, मैं तो ये 5 बजे के बाद आप फारिग हैं। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, 5-6 बजे के बाद आप फारिग है, सुबह 7-8 बजे अब आपकी लाइफ में दोबारा स्टार्ट होना है, तो कैसे टाइम नहीं है? मतलब आप खुद ही अपना जहन बनाकर बैठ गए कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो 24 आवर है, हर एक के पास है। कितना घंटा सलमान भाई काम करेगा? 12 घंटे काम करेगा
जी,
7 घंटे आराम करेगा, कितने हो गए? 19 घंटे हो गए
जी,
19 घंटे हो गए ना
जी 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 जी।
उसके बाद 5 घंटे और इसके पास हैं
जी,
तो 5 घंटे क्या करेगा रोजाना? रोजाना 5 घंटे उसके पास यार, उठना करना, चलो 1-1.5 घंटा 2 घंटा और निकल, फिर भी 2-3। ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 12-12 घंटे काम करते हैं
माशाल्लाह,
मगर 12 घंटे में भी ब्रेक है, उसमें भी जोहर का ब्रेक है, लंच का ब्रेक है, असर का ब्रेक है, मगरिब का ब्रेक है, ब्रेक तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। लोग कहते हैं सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, भैया ठीक है, मगर ये तो काम कर लेंगे जो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम अपने आप को बैलेंस की तरफ लेके जाएं, और जो खानदान, रिश्तेदार, वालिदैन और जो दुखी लोग हैं उनके से रबते में रहें, और सिर्फ मैं कहता हूँ सिर्फ स्टिकर भेज कर व्हाट्सएप पर इस पर सिर्फ रबते पर ना रहें, काइंडली एक व्हाट्सएप कॉल ही कर लें यार, अब तो आपको पैसे वैसे भी इतने नहीं लगते, एक कॉल ही कर लें, उसका रिप्लाई नहीं अटेंड हो रिप्लाई तो कही अभी इसलिए कॉल की दी, या फिर कॉल करने के बाद एक वॉइस नोट दे दें कि मुझे पता चला था आपका ये, तो मैंने कहा कॉल कर लूँ, ताज़ियत कर लूँ, लगता है आप नहीं अटेंड कर सके होंगे, तो मैं फिर वॉइस, तो आपको वॉइस मैसेज भी कंसीडर किया जाएगा, ताकि मिस कॉल वो देख लेगा कि यार मैंने ही अटेंड नहीं की थी। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहां पर जस्ट एक टेक्स्ट भेज देना ये काफी नहीं होता। ऐसे रिलेशन है हमारे कि वहां पर टेक्स्ट मैसेज या स्टिकर तो बाद का बंदे को बुरा लगा देता है। अगर आपको टेक्स्ट भी लिख कर भेज दो यार, उसको वॉइस करने की भी तौफीक नहीं हुई। बाद का वॉइस भी मैं समझता हूँ कि शायद इतनी ज्यादा वो रेलिवेंट ना रहे, आप कॉल करनी पड़ेगी। और बाद जगह कॉल या वॉइस मैसेज इसका कोई भी नहीं होता, आपको पर्सनली जाना पड़ता है। खानदान निभाने, रिश्ते निभाने और सवाब भी तो कमाना है ना।
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की साहब आपने। आपकी सारी गुफ्तगू सुनकर मुझे जो एक फील आई है वो ये है कि हम शायद इन चीज़ों के जो अजर हैं, जो इसके जो सवाब हैं, आयारत करने के, ताज़ियत करने के, सिला रहमी करने के, भलाई करने के, किसी की परेशानी को दूर करने के, इसके जो अजर व सवाब हैं उन पर शायद हमारा फोकस नहीं है, या वो रिवायात हमारे पेश नज़र नहीं है। क्या आप ये मशवरा देंगे कि इस तरह के जो मामलात हैं, इनकी जो फजीलतें हैं, इनको जो है वो स्टडी किया जाए, पढ़ लिया जाए, इससे भी जो है वो जहन बनेगा कि हमने वक्त निकालना है और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए ये काम करने हैं?
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कुरान करीम में हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है इस काम के लिए, इस अमल को करने के लिए। हदीसों में हमारे रहनुमाई मौजूद है। खुद रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में, यानी एक तो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और एक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाहर जाकर भी सहाबा करम की इबादत फरमाया करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे पढ़ाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरीजों की इयादत फरमाते थे, इनकी खबर गिरी लिया करते थे, कोई नजर नहीं आता तो उसके बारे में पूछा करते थे, इनके बच्चों पर शफकत किया करते थे, इनके बच्चों को अपनी गोद में बिठाया करते थे और सहाबा कराम के साथ वक्त गुजारा करते थे, फिर अहले बैत अतार की तरफ जाया करते थे, घरों में वक्त दिया करते थे, अज़वाज मुतहरात को वक्त दिया करते थे, जो सामान खरीदना होता था वो लेकर घर पर दिया करते थे, इनके साथ बैठा करते थे, तशरीफ फरमा होते थे, इनके साथ खाना खाया करते थे, मस्जिद में नमाजें हैं वहां सहाबा करम आ रहे इन्हें वक्त दिया करते थे, घर में वक्त दिया करते थे, फिर सफर होते थे वहां सफर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम पढ़े तो सही, रात का एक हिस्सा आराम भी फरमाया करते थे, फिर इबादत भी क्या करते थे, आप पर तो तहज्जुद फर्ज थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो नमाजों की किस तरह मामलात हुआ करते थे और जिस तरह हुकूक की अदायगी के तौर पर जो अंदाज हुआ करता था, फिर आपके हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हाजिर होती हैं तो उनके साथ जो मामला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और आपके जो रजाई भाई और बहन आए उनके साथ जो मामलात किए, वालिदा रजाए वाले उनके साथ जो मामलात किए, तो इसमें ये होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज मुबारक इतना खूबसूरत हुआ करता था। यानी आप देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी तालीम अता करेगा उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनसे मेरे आका बेहद मोहब्बत फरमाया करते, आप हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन है, जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं, दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सहेली को तोहफा भेजा करते थे और इनका जिक्र किया करते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तरफ इरशाद अता फरमाना, दूसरी तरफ अपना अमल, और फिर उस अमल को सहाबा अकरम अलैहिम रिदवान जिस तरह लेकर चले और उनको इताअत जो इताअत जो इत्तबा का मामला रहा, तो ये हमारे लिए भी है अगर ये सब पढ़ेंगे और फिर हमारे फवाइद देखें, एक तो दुनिया और आखिरत की बरकतें और अल्लाह की रिजा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत और इत्तबा का मामला जिसका जो सवाब है वो एक अपनी जगह पर जुदा है, फिर जो दर्जात की बुलंदी वगैरह जन्नत की बिशारतें ये सारे जो खुशखबरियां कही ऐसे आमाल में, साथ साथ आप देखिए कि जो रिस्क में बरकत चाहे वो सिले रहमी करे, बुरी मौत से बचत चाहे सिले रहमी करे, उम्र में बरकत चाहे सिले रहमी करे, जो चाहे कि अल्लाह पाक मेरी हाजत पूरी फरमाए उसको चाहे कि अल्लाह ताला के बंदों की हाजत रवाई की वो सूरत عادت روائی کرے, بلکہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے. تو یوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو جنازے میں شرکت کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے, ہم عیادت کو جائیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, سارے ہمارے فوائد تو بیان ہے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور ان روایات کو اور یہ جو ثواب ہیں, مسکرا کر ملاقات کرنے کا کیا ثواب ہے, خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کا کیا ثواب ہے, جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کا کیا جو ہے وہ ثواب ہے, عیادت کرنے کا کیا ثواب ہے, یہ پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس کا نام ہے حسن اخلاق. چھوٹی سی کتاب ہے, بالکل چند صفحات پر مشتمل کتاب ہے, اس کو آپ پڑھ لیں. ہر جو ہے وہ بات کے نیچے کوئی ایک ایک دو دو حدیثیں, تین تین حدیثیں بھی ہیں بعض اوقات, اور ایسا لاجواب یہ بکلیٹ ہے, ایسی لاجواب یہ جو ہے وہ کتاب ہے کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جتنے کام نگران شورا جو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنے چاہیے, ان کا انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا, اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے ہمیں فائدے بھی ہوں گے. ایسا خاندانی روایات کی اگر بات کریں تو یوں ایک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے تھے, تو ابھی یہ مل کر بیٹھنے والا معاملہ بھی نہیں ہے, یا جو ہے وہ اب تو چلیں اس کی جدید صورت بھی یوں ہے کہ کال کر لیں گے, گروپ کال کر لیں گے, اس میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مل کر بیٹھنا بھی نہیں چاہتا, ان کا یہ ذہن ہے مل کے بیٹھیں گے تو ادھر لڑائیاں ہی ہونی ہیں, جھگڑے ہی ہونے ہیں, فالتو باتیں ہی ہونی ہیں, تو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی. بھائی ٹھیک ہے بھائی, بس ٹھیک ہے, اپنے اپنے حساب سے آپ جو ہے وہ چلتے رہیں, اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیے, جہاں پر اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑے کا چانس ہے, کوئی غیبت چگلی کا ہے اور گناہ بھرے معاملات ہونے کا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں تو ہمیں اللہ پاک کی رضا پر نظر رکھنی اور اس جگہوں سے بچنا ہے. صحیح. اگر اس جگہ پر جانے سے ملنے سے آپ کو پتا ہے کہ جناب یہاں پر میں گناہ سے نہیں بچ سکوں گا, اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو آپ کیا کریں گے, بچیں گے
جی.
رہی بات ملنے جلنے کی, تو ملتے جلتے تو مگر انداز بدل گئے, اب پکنک پہ جاتے ہیں, تو فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں, تو ہوٹلنگ پہ جاتے ہیں, سب کرتے ہیں. اب اس میں جائز نہ جائز, حرام حلال کی کہیں تمیز ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, تو یہ ہے. مگر وہ جو ملنے جلنے والے بھی جو ملنے جلنے کے لیے جگہ جاتے بھی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ, میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ہاتھوں میں موبائل ہے اور ملنے بھی بیٹھے ہیں تو وہ مل نہیں رہے, وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, چھ سات سات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں جیسے کہ موبائل ہے. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے میں ایک ویڈیو بناؤں اور ویڈیو کو سب کو بھیج دوں گا, بھائی تم آپس میں بیٹھے کیوں ہو. مگر سارے مطلب کہ وہ باپ اپنا موبائل لے کر بیٹھے, والد صاحب اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہیں, بیٹی اپنے موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, بچوں کی امی اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہیں, بچے سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں, ایک ہی, کیونکہ سب کو پتا ہے وائی فائی یہیں آ رہا ہے. اور اچھا یہ وائی فائی اگر یہاں نہ آ رہا ہوتا اور اپنے اپنے کمروں میں آ رہا تو یہ اپنے 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 کمروں میں ہو رہے ہوتے, مگر چونکہ سگنل یہاں آ رہے ہیں, والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, امی یہاں بیٹھی ہے, بھائی یہاں بیٹھے ہیں, بہن یہاں بیٹھی ہے, اس سے شاید ہی بیٹھے ہوں گے, یہ بیٹھے ہوں گے, سگنل آ رہے ہیں, جہاں سگنل آتے نا بندہ چلا جاتا ہے کہ یار ادھر سگنل آ رہا ہے, اس کا بھی سگنل وہیں آ رہا ہوتا ہے. تو یوں بیٹھے آپس میں وہ کر رہے گفتگو, موبائل پہ مصروف ہے, تو ملنا جلنا ہے مگر وہ ملنے جلنے کی نوعیت
تبدیل ہوگی,
بدل گئی ہے.
ایسا ایک سوال ہے,
نہیں بھی جا رہے ہوتے
جی,
یہ بھی لوگ ہیں جو نہیں جا رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے یار ہم ٹائم نہیں ہے, تو اس کے لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آج ٹائم نہیں ہے تو بے شاید آپ کے لیے بھی کسی کے پاس ٹائم نہ ہو.
پرسنل سا ایک کوسچن ہے ایک, اور میں یہ کر ہی رہا ہوں بات, میں نے چونکہ کر ہی دی ہے تو اب میں یہ کر ہی دوں گا. آپ ایک اتنی بڑی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ماشاء اللہ الکریم جو ہے وہ آپ نگران مرکزی میں سے شورا ہیں, اور اللہ کریم نے آپ کو دینی مصروفیات بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں, آپ ویسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح سے کبھی مل جل کر کوئی بیٹھنے کا کوئی سلسلہ کار ہوتا ہے آپ کے یہاں؟
میرے رشتہ دار ہی بتائیں گے کہ میں ان سے کتنا ملتا ہوں. الحمدللہ میرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان سے رابطوں میں رہنا, یہ جس حد تک ہے الحمدللہ میرا تو ہے. میں اپنے رشتے داروں کو اگنور نہیں کرتا میکسیمم, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میں کوئی 100% ہوں, لیکن جن جن سے رابطہ میرے لیے پوسیبل ہے یا ہو جاتا ہے یا ہم کر رہے ہوتے ہیں یا بس ریگولر ہو رہا ہوتا ہے, تو ملنا جلنا یہ میں الحمدللہ मैं पसंद करता हूँ इसको क्यों इस, और ये यूं समझे कि ये मेरी एक तरह से जिम्मेदारी भी है, एक तो फैमिली से मिलना और ये भी एक जिम्मेदारी है, मेरी अखलाकी जिम्मेदारी भी है, मेरी एक खानदानी जिम्मेदारी भी है, ये सब करते रहना। फिर एक मैं कहता हूँ कि एज ए तंजीमी और दावत इस्लामी से वाबस्ता होने के तौर पर भी मैं इसको अपनी जिम्मेदारियों में शुमार करता हूँ कि मैं जाऊँगा, बैठूंगा, मिलूंगा तो कोई दो बातें नेकी की दावत की हो जाएंगी, कोई और कोई अच्छा काम हो ही जाता है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और मुझे तो फवायद ही मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो फवायद ही मिले हैं। और ये बात मेरे जो भी हमारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, बस जो अवेलेबल है, बाहर हमारे आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो उनसे भी बातों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी, अच्छा फिर ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ, ये ना हो कि मैं कर, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कजन हैं, मेरे जो भी रिश्तेदार हैं वो मुझसे भी रब्ता वो मौके बा मौका वो करते हैं, हाल अहवाल लेते हैं, पूछते हैं, ईद के मौके पर, दीगर मौके पर सलाम दुआ कर लेंगे, कहीं बैठक होगी तो मैसेज कर देंगे, आओ ये करते हो, ये हमारा रहता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई गुनाह भरा माहौल ना हो तो इससे आपको कल्बी जहनी हर तरह का सुकून भी मिलता है
माशाल्लाह।
और आउट ऑफ, क्योंकि ये एक कंपनी तो है ना, अपनी खानदान के रिश्तेदार कंपनी है, फिर इसी तरह ये तो घर है तो बेटियां हैं तो बेटे हैं, दामाद हैं, तो ये सारा मतलब के पूरा घर, ये घर भरा भरा हो तो अच्छा लगता है यार। मतलब बहू वाला घर है, दामाद वाला घर है, बेटों वाला घर है, बेटी वाला घर है, नवासे हो, पोते हो, पोतियां हो, नवासियां हो, समझ रहे ना,
माशाल्लाह।
और साथ के खानदान और रिश्तेदार होते हैं, जबकि पर्दे का एहतमाम हो, नीकियों भरा माहौल हो, ये सारी चीजें, ये इस कंडीशन को कभी भी खत्म नहीं होने, वरना तो भी तो खैर और बरकत कहाँ से आएगी। अगर ऐसा जमा हो जाए जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल के ना फरमानियां हो रहा था, जहाँ अल्लाह उसके प्यारे हबीब की ना फरमे, वहां ना खैर है, ना वहां बरकत है, ना वहां कोई इतफाक है, ना वहां कोई मोहब्बत है। मतलब ये सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में, सारे खानदान और सारे लोग जो देख और सुन रहे सब इस बात को समझ लें कि इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि ये दिलों में मोहब्बत डालना अल्लाह का काम है, इतफाक पैदा करना अल्लाह का काम है, आपस में इस तरह की खूबसूरत रवाबित हमारे बने रहे, ये सब अल्लाह की रहमत है। बता, ये सब अल्लाह की रहमत से होगा, अल्लाह के काम है, सब अल्लाह की रहमत से होगी, अल्लाह चाहेगा तो वो होगा, मैं ये कहना चाह रहा
हूँ।
ये तभी होगा ना जब वो फरमा बरदार इताअत वाला काम करेंगे, तो यूं हो तो ये एक अच्छा लगता है, पर्दे का एहतमाम हो और सारी नेकी की दावत के वहां सिलसिले हो, वो खूबसूरत होता है। और ये करने वाले कर रहे होते हैं, और जो कर रहे हैं वो मेरी बात समझ भी रहे होंगे, मगर ये कि अगर वहां अल्लाह ना करे कोई लाइन क्रॉस हो रही होती है शरी हवाले से, अर्ज कर रहा हूँ बेपर्दगी के ताल्लुक से, या कोई गुनाह भरा और कोई सिलसिला होता हो, तो उसको काइंडली जरूर नोटिस करना चाहिए कि ये हमें अलाउ ही नहीं है, जो अलाउ ही नहीं है तो अलाउ ही नहीं,
वो करना ही नहीं है,
वो करना ही नहीं है।
मरहबा,
आप उसको इससे हटकर काम करें, इंशाल्लाह ताला देखें खैर और बरकत आपकी तरफ दौड़ कर या उड़ करना है तो मुझे कहिएगा।
वाह वाह वाह, मरहबा। ये सवाल करने का मेरा मकसद ही जो है वो ये था, मध्य जल के नाज़रीन, निगरान शूरा माशाल्लाह एक स्केजुअल है, जदवल है, तंजीमी जिम्मेदारियां हैं, तकरीबन कमोबेश निगरान शूरा का 10 घंटे का, 12 घंटे का बाज़ औक़ात जो है, और बाज़ औक़ात जो है वो 14-14 घंटे का, 16-16 घंटे का भी ये तंजीमी यूँ बोलिए कि मसरूफियात का जदवल जो है वो रहता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक इनके शोबे से ही है, तो मुझे बहुत सारी बातों का स्केजुअल के हवाले से, ड्यूरेशन के हवाले से पता है। अभी भी बाहर जो जदवल कर रहे हैं तो इसमें भी ट्रैवल भी है, तो मशवरे भी हैं, तो और मुख्तलिफ माशाल्लाह सिलसिलेकार हैं निकी की दावत के, होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ये वक्त दे सकते हैं तो आप और मैं भी वक्त दे सकते हैं, जहन बनाने की जो है वो बात है। ये सवाल मैंने किया ही इसलिए था ताकि पता चले कि हम जब एक इतना मसरूफ बंदा टाइम निकाल सकता है तो हम भी टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम को बहाना नहीं बनाना चाहिए, पॉइंट इज दिस। और निगरानी शुरा का मैंने एक और अंदाज देखा है कि हाई साहब बाज़ लोग होते हैं वो अपनी बेटियों के घर भी नहीं जाते, और बेटियों के घर जाना, अभी हम तो बेटी के घर का पानी भी जो है वो नहीं पियेंगे, तो और बिल्कुल मतलब बस जाएंगे बैठेंगे तो
नहीं, नहीं क्या बेटी के घर का पानी फिल्टर वाला नहीं होता
फिल्टर वाला होता है या नहीं होता है?
अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने ये चीज अगर फिजिकल देखे तो अमीले सुन्नत सीखी, और अमीले सुन्नत सुन्नत पर अमल करते हैं,
सुभान अल्लाह।
ये मैंने देखा अमीले सुन्नत के साथ, कभी आप बैरून मुल्क से आए हैं
वाह,
और जब जब आपको पॉसिबिलिटी रही है تو آپ یہ کہتے ہوئے کہ بیٹی کے گھر جانا چاہیے, سنت بھی ہے, تو امیر رسول اپنی شہزادی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے. ہم نے یہ کئی دفعہ دیکھا ہے. تو جا کر اگر والد کے لیے پوسیبل ہے اور جانا چاہیے تو بیٹی کے گھر بھی والد سب کو جانا چاہیے. بیٹی بیٹے جو بھی ہیں سب کے گھروں پر, یہ تو انتہائی قریب ترین رشتے ہیں نا, تو ان سے تو رابطہ اور واسطہ تو کیسے ختم ہوگا.
ماشاءاللہ,
جو بلڈ ریلیشن ان سے رابطے واسطے نہیں ختم ہوتے, یہ تو ہونے چاہیے اور مضبوط ہونے چاہیے.
ماشاءاللہ, نگران شورا بھی ماشاءاللہ یہ اس پر عمل پیرا ہیں, اور حاجی اویس بھائی کے گھر پہ ماشاءاللہ, حاجی یعقوب صاحب کے گھر, چونکہ نگران شورا کی جو ہے وہ صاحبزادی کا وہاں پر مطلب سلسلہ کار ہے, نکاح کا بچے بھی ہیں ماشاء اللہ الکریم اللہ کی رحمت سے, تو نگران شورا کا میں نے دیکھا ہے آپ بھی جو ہے وہ جاتے ہیں, اور بعض اوقات سفر میں وہ ساتھ بچے جو ہے وہ کنٹینیو بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ پیچھے نہیں آنا, ہم نے کیا کرنا ہے آگے جانا.
میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے گفتگو کروں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ والد جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کے گھر کو اگنور نہیں کرتے ہوں گے. بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں میں آپ کو بتاؤں, اگر والد اگنور کرنا چاہے نا, میں آپ کو سلمان بھائی بتاؤں, بیٹیاں نہیں کرنے دیتی, اسپیشلی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا, بیٹیاں نہیں کرنے دیتی. بیٹیاں خود والد سے اتنا رابطے میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اتنی وہ بیٹی یوں سمجھیے کہ رخصتی یعنی بیٹی جب سسرال جاتی ہے نا, تو شاید اس کا اپنے والدین اسپیشلی والد سے اس کی جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے نا, وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہے, اور وہ کرتی ہے. بیٹی اور کئی بیٹے ہیں جو شاید اپنے والد کو الگ نہیں ہونے دیتے, یعنی جدا نہیں ہونے دیتے, وہ خود ہی اپنے والد سے اپنے والدین سے آپس میں رابطے کرتے ہیں. لیکن میں یہاں صرف یہ کہوں گا کہ یہ تو ہے, لیکن جہاں یہ نہیں ہے وہاں یہ ہونا چاہیے.
ماشاءاللہ حکیم, اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہماری غفلت کو جو ہے وہ دور فرمائے. ایسا بھی ایک اور بات بتائیں کہ یہ خاندانی سسٹم میں, فیملی سسٹم میں رہنے والے یا جوائنٹ فیملی میں رہنے والے بچے, ان کی نشو نما اور ان کی یوں بولیے کہ سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بہتر بنانے میں کیا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں, اور وہ لوگ جو انڈیویجول طور پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, ایک بچہ ہے, ماں ہے, باپ ہے, باپ کی اپنی زندگی ہے, ماں کی اپنی موبائل کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سلسلہ کار بنا ہوا ہے, بچے کو بھی ایک گیجٹ جو ہے وہ لے کے دے دیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کہاں بینیفٹ آ رہا ہے, کہاں نقصان آ رہا ہے, کہاں پلس ہو رہا ہے, کہاں مائنس ہو رہا ہے؟
دیکھیں سلمان بھائی, زمین کو اتنا پانی دیں جتنی اس کی ضرورت ہے, زیادہ دینے سے بھی زمین ضائع ہو جاتی ہے, کم دینے سے بھی زمین ضائع ہو جاتی ہے. ہر ایک چیز کے لیے اتنا ٹائم ہے, گھر والوں کے لیے, اپنے پرسنل کے لیے, اپنے دیگر کاموں کے لیے, فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. اس میں ہماری جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ڈس بیلنس سے ہو جاتے ہیں, کسی ایک طرف جاتے تو وہیں چلے جاتے ہیں, اگر گھر پہ جاتے تو پھر ایسے جاتے ہیں کہ پھر وہ باہر کے نہیں رہتے, باہر جاتے تو گھر کے نہیں رہتے, فلاں کو پاس جاؤ تو اس کے نہیں رہتے, اس کے پاس تو اس کے نہیں رہتے. آئی تھنک کہ اوور آل اگر ہم دنیا بھر کے طور پر اگر بات کریں, ایک سماجی اور سوشل طور پر جو دنیا بھر میں لوگ رہتے ہیں, پاکستان میں ہے یا آؤٹ آف پاکستان ہے, یہاں تو چلو جہاں جن ممالک میں میں ہوتا ہوں, یہاں 5-6 بجے کے بعد لوگ تو گھروں پہ ہوتے ہیں, تو آپ ان سے کیا آپ کہیں گے کہ کس کو ٹائم دے کس کو ٹائم نہیں دیں گے, اور ان کا ویکینڈ بھی زیادہ تر اپنے فیملیز کے ساتھ ہی گزر رہا ہوتا ہے, جبکہ ہم ان کو کہتے ہیں, ان کے فیملیز کو بھی کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, صرف گھومنا پھرنا ہی نہیں, اصل یہاں یہ ان کو آواز ہوتی ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے, نہ وہ رشتے دار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گھر والے بھی صبح جاتے ہیں شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں, پھر تھوڑا سو جاتے ہیں 2-2.5-4 گھنٹے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر ویکینڈ ملتا ہے. لیکن یہ کام دیگر حوالے سے بھی کیے جا سکتے ہیں اور اپنی مصروفیت بنائی جا سکتی ہے, چونکہ میں ایک دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, اور دعوت اسلامی کے ہزاروں لاکھوں گھروں میں سم ٹائم یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے, پیجز کے ذریعے ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں, ہمیں سوشل پیجز کے ذریعے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, جا کر پاکستان ایسے ملک میں جہاں ان کے رشتے دار خاندان نہیں ہیں, تو اپنی دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز بہت ہیں, آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں, مطلب ہمارے جو تنظیمی کام ہے, دینی کام جس کو ہم کہتے ہیں, آپ نیکی کی دعوت کے کام لیں, پڑھنے پڑھانے کے کام لیں, درس و بیان کے کام لیں, نیکی کی دعوت کے لیے کہیں گھر درس کا دینی کام ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغات کا دینی کام ہے, تو آپ اس پہ اگر مصروف رہیں تو آپ کو خود لگے گا چھٹی کا دن آج اسلام بھائی نے ٹائم دے دیں گے, چھٹی کا دن اسلام بھائی ٹائم دے دیں گے, तो ये एक कल्चर डेवलप करना पड़ता है। अगर ये करेंगे तो आप खुद मसरूफ हो जाएंगे, जैसे हमारे पाकिस्तान या दीगर शहरों के अंदर हमारी कई इस्लामी बहन इस्लाम भाई मसरूफ होते हैं, घर में भी जाते हैं, घर के बाहर भी वक्त देते हैं, तो जो घर का वक्त है वो घर के अंदर देते हैं, जो घर के। लेकिन इतनी मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पेशली इस्लामी भाइयों से भी, जो इस तरह इस्लामी बहन है, अगर कोई कमजोरी, एक वर्ड है सलमान भाई, क्वालिटी टाइम, हमेशा क्वालिटी टाइम दें, अपने घर में भी क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम से मेरी मुराद यही आपको मैं अर्ज करूंगा कि अब जैसे कि मैं घर जाऊं, मुझे करना ये चाहिए कि मैं घर जाऊं तो मैं मोबाइल पे रख दो ना, और जाकर घर में साथ बैठ जाऊं और उनकी दो बातें सुनो। अच्छा खाना खा रहे हैं तो मोबाइल रख दो, इनकी दो बातें सुनो, जो जो इनको बातें करनी। अच्छा फिर एक ऐसा टाइम कि जिसमें वाकई इनके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, उसमें करना क्या है, उसमें मतलब खाना भी खाना है तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही उम्मत वाला काम है, नेकी की दावत है, सुन्नत और आदाब है, घर में बैठना है, इसकी बात है, उसकी बात है, कुछ और घर के मामले बातें तो होती है, घर के मामला भी होते हैं, घर की डिस्कशन भी होती है, आपस के कुछ जज्बात और एहसास होते हैं, बच्चों के कुछ जज्बात एहसास होते हैं, तो ये सारी बातें मतलब हो सकती हैं। जबकि इसमें कोई गुनाहों भरी गुफ्तगू ना हो, मदी चैनल के प्रोग्राम है वो हम देख रहे होते हैं ये सारी चीजें, तो मेरे ख्याल है कि घर में भी क्वालिटी टाइम, जैसा आप ऑफिस में भी तो क्वालिटी टाइम देते हैं ना, नॉन क्वालिटी टाइम अगर ऑफिस में देंगे तो आपके आपकी क्या पोजीशन रहेगी, तो घर में भी क्वालिटी टाइम दे, हुस्न अखलाक के साथ टाइम दे, मुस्कुराता हुआ वक्त दे, हशाश बशाश वक्त दे, अगर खुदा ना करता कोई परेशानी है, घबराहट है, तो आपस में डिस्कशन भी इस अंदाज से करें कि उसमें फिर वो झगड़ा ना हो, यार तुम्हें नहीं पता आजकल क्या हालात है, उसको भी पता आजकल क्या हालात है, सबको पता आजकल क्या हालात है, मगर ये बातें लड़कर करने के बजाय नरमी से भी तो की जा सकती हैं, एक दूसरे को अपनी चीजों को रियलाइज भी तो करवाया जा सकता है। सही। तो इस तरह मतलब कि आप घर में वक्त देंगे तो इंशाल्लाह ताला घर अमन का गेवारा रहेगा।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ऐसे लोगों का एक ये भी रुझान होता है कि जो परेशान होते हैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनकी कफालत करते हैं, उनको पांव पे खड़ा करने के लिए कोशिश जो है वो करते हैं, जो माली तौर पर कमज़ोर होते हैं उनकी बाज़ुकात लोग जो है वो इमदाद भी करते हैं। तो 1,000 रुपये अगर किसी के पास हों तो वो 10 बंदों को 100-100 रुपया दे दे, या एक ही बंदे को 1,000 रुपया जो है वो दे दे, ये जो मदद करने का अंदाज है ये क्या होना चाहिए, इस पर कुछ रोशनी डालें।
देखिए इसमें मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे आदमी ऐसे ही ज़कात वगैरह की बात नहीं कर रहा, ऐसे आपस की मदद की बात कर रहा हूँ, उसमें आई थिंक सर कंडीशन के मुताबिक फैसला करना चाहिए। किसी को हो सकता है कि आप थोड़ा अमाउंट दे दें तो वो अपने पाँव पर ही खड़ा हो जाए, वो रोजगार पर चला जाए और वो मुस्तकिल अपने घर का कफील किफालत करने वाला बन जाए, तो ये एक अलग कंडीशन है। और बाज़ औक़ात ऐसी कोई सूरत नहीं नजर आती तो कई कई जरूरतमंद होते हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े किसी को देंगे तो वो इनके लिए भी ऑक्सीजन का काम करेगा। तो बाज़ औक़ात एक बार किसी को दे दिए और वो खड़ा हो गया तो दोबारा तो उसको देने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह भी लोग करते हैं कि किसी को अपने पाँव पर खड़ा कर देते हैं, उसको रोजगार, ये खानदानों में होता है जनरली तौर पर, खानदान में एक काथ कोई उमूमन एक काथ कोई साउंड मजबूत फाइनेंशियली या इन्फ्लुएंस किस्म की पर्सनैलिटी खानदानों में होती है और वो करते हैं, यानी मैं जिन्हें जानता हूं बाजों को जी, वो करते हैं, अपने खानदान का करते हैं, खानदान के बच्चों का करते हैं, अपने भाई का, बहनों का, भाई बहनों के बच्चों का, और ये सब करते हैं, ऐसा नहीं करते, मगर करने वालों को बस अल्लाह के लिए करना चाहिए, ना कि एहसान जताने के लिए करना चाहिए, ना एहसान जताना चाहिए कि जो भी करे सवाब के लिए अगर कर रहे हैं तो अल्लाह पाक नेकोकारों का अजर जाया नहीं फरमाता, जो अच्छा काम करेगा अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाता, अल्लाह पाक उसको अजर देगा। तो इखलास के साथ करे और कहते ना अपने सदकात बातिल ना करो, ईजा दे करो, एहसान जता कर,
ला तुबतिलू सदकातकुम बिलमन्नी वल अदा,
जी तो नहीं करना चाहिए ऐसा, मगर करते हैं लोग, ये मदद कर रहे होते हैं, अगर इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं तो इस तरह कोई सूरत बनती हो तो आदमी को देखना चाहिए कि कहीं बाद औकात एक वन शॉट किसी को ऐसी मदद कर दे जिससे वो खुद भी खड़ा हो जाएगा और शायद हो सकता है कि वो अपने भाई बहनों को भी सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो आई थिंक सम टाइम एज पर कंडीशन आपको डिसीजन लेना चाहिए।
माशाल्लाह। अच्छा पहले खानदान में एक बड़ा आदमी होता था और लोग जो है वो उसकी बात सुनते थे, मानते थे, कहीं झगड़ा हो गया है तो वहाँ वो सुलह करने के लिए, सुलह करवाने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करेगा, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अपना यूज़ करेगा वहाँ पर। आज तो जिसको देखें हर कोई बंदा खुद ही बड़ा बना हुआ है, अपने घर का मैं ही बड़ा हूँ, अपना जो मेरा है बस ये मेरा घर है, ये मेरी ही सल्तनत है। तो आजकल तो हर बंदा जो है वो बड़ा बना हुआ है। तो ये जो निज़ाम बन रहा है या ये जो अंदाज आ रहा है, और पहले जिस अंदाज का मैंने तज़किरा जो है वो किया है, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, बैलेंस की राह क्या है इसमें?
देखिए, अगर कोई घर का बड़ा या जिसको आप कहते हैं कि मरकजी शख्सियत अगर घर में होती है, खानदान में होती है ना, तो समटाइम उन घरों और खानदानों के निज़ाम जो है ना वो संभले रहते हैं। मरकजियत इदारे की भी, जैसे हमारी मरकजियत, अल्लाह हमारे अमीर सुन्नत को भी सलामत रखे, तो उनको दराज खैर अता फरमाए, मरकजियत होती है तो कहीं ना कहीं इदारे की, तंजीम की, घर की मरकजियत होती है। जैसे कि एक छोटा सा भी घर है ना, उसकी मरकजियत उस घर का सरबरा है, वो हेड हेड ऑफ द फैमिली जिसको आप कहते हैं जी। तो एक हेड ऑफ द फैमिली, एक हेड ऑफ द वो मतलब वो पूरे घर का, जैसे कबीले के लोग उमूमन बड़े होते हैं
जी,
तो ये होते हैं खानदानों के लोग बड़े होते हैं, तो लोग उनके गिर्द होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आउट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं एक शाह से मिला, तो 7 या 8 भाई हैं सलमान भाई, और यूनिटी के साथ मुझे इस्लाम भाई ने बताया, बड़ी यूनिटी है और बहुत बड़ा इनका समझे के बिजनेस मुझे बताया गया। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि हम भाई हैं और यूं करते, तो मैंने इनको डायरेक्टली, इनके वालिदैन नहीं थे, ना अम्मी है ना अबू है, भाई हैं सिर्फ, बहनों का मुझे पता नहीं है। तो मुझे जब इन्होंने अपनी जो अंदाज जिंदगी का और जो यूनिटी का जो बताया, तो मैंने इनको एक सवाल किया, मैंने कहा वालिदैन तो नहीं आपके, अल्लाह इनको करी के रहमत करे, जरूर आप में से किसी एक को बड़ा बनाया होगा और आपने उसको बड़ा बनाकर आप उसको फॉलो कर रहे होगे। तो इन्होंने बताया हाँ हमारे बड़े भाई हमारे बड़े हैं और हम इनको फॉलो कर दे। मैंने कहा ये आपकी कामयाबी है, अगर सबको, अगर हर कोई मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए कि ये भी ये मेरा तो ये नहीं होता, मगर इसका ये मतलब नहीं होता। उमूमन क्या होते हैं जो घर के बड़े होते हैं ना, अब अच्छा ये जिन जो घर के बड़े थे उनका भी जाहिर बात है एक किरदार होगा ना।
वाह,
अब बड़ा बोले कि मैं बड़ा, तो वो दही का बड़ा, वो तो वैसा नहीं बड़ा होता। मैं ये समझता हूँ सलमान भाई जी, कि घर का बड़ा बनने के लिए आपके पास बड़ापन होना चाहिए।
वाह,
बड़ापन आपको बड़ापन होता है कि आदमी अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करता है, खुद कुर्बानियां देता है, अपनी खुशियों के बजाय अपने भाई बहन और फैमिली मेंबर्स की खुशियों को अहमियत देता है, उनके लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, उनके लिए सोच रहा होता है। और हमने देखे खानदानों में, मेरे पर्सनली देखे हैं कि उन्होंने मतलब कि अपनी जिंदगियों को भाई बहनों के लिए, और अभी भी मिलते हैं यार हमने जिंदगी, मुझे एक मिले थे शायद लाइव प्रोग्राम था या कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, कहा था यार सारा भाई बहनों के लिए कर दे, मैंने क्या गलत किया? अगर भाई बहनों को लेकर तो क्या गलत किया, क्या किस चीज का पछतावा? अच्छा वो बात कर रहे थे जैसे इनको पछतावा है, मैंने कहा वो किस चीज का पछतावा है? अगर आपने भाई के साथ उसने सुलूक किया, बहन के साथ उसने सुलूक किया, इनके लिए कोई फाइनेंशियली आपने कोई चीज कर दी, इनके लिए दुनिया और आखिरत के बेहतरी के लिए कोई काम कर दिए, इनके बच्चों के लिए कोई काम कर दिए, आपको रिग्रेट क्या है, आपको शर्मिंदगी क्या है, इसमें क्या गलत किया था? क्या इस बात की शर्मिंदगी है कि उन्होंने आपको बदले में कुछ नहीं दिया या उन्होंने कोई आपके साथ वदाना करते ऐसा कर दिया? तो इसमें मतलब कि आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ने आपसे काम लिया, अल्लाह पाक ने आपको खानदान के अंदर एक इज्जत दी, अल्लाह ने आपको असबाब दिए, अल्लाह पाक ने आपको माल दिया, सिर्फ माल नहीं दिया, आपको खर्च करने की तौफीक भी अल्लाह ने दी।
वाह 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 वाह,
अगर तौफीक अल्लाह ना देता तब भी आप ना कर सकते हैं।
सही,
और आपको दीगर की तरह जरूरतमंद नहीं बनाया, आपको देने वाला बनाया। जब देने वाला बने तो यहाँ अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि यहाँ पर मतलब आदमी अल्लाह ना करे को तकब्बुर और गुरूर में पड़ जाए या कोई अल्लाह ना करे दिल आजारी वगैरह में पड़ जाए, तो ऐसा करना चाहिए। तो अच्छा फिर छोटों को भी चाहिए कि वो इन बड़ों का अदब भी करें, एहतराम भी करें, और इनकी उन जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो कुर्बानियां हैं, जो उन्होंने आपके लिए जो कुछ किया, उसको मतलब एडमायर भी करे, उनकी हौसला अफजाई भी करे। यार बच्चा को, बच्चे को भी हौसला अफजाई चाहिए होता है, आपने क्या कर दिया। लोग तो माँ बाप को कहते हैं आपने क्या कमाल कर दिया। ठीक है, जब आपका बच्चा आपको बोलेगा ना, तब मैं पूछूंगा कि आपने क्या कमाल कर दिया।
अल्लाह की पनाह।
तो ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। एहसान जताना नहीं चाहिए, लेकिन एहसान का बदला क्या है? मगर एहसान, भलाई का बदला भलाई से देंगे ना, तो भलाई का बदला बुराई से देंगे। क्या भलाई का बदला आप उसके दिल आजारी से देंगे, उसको ये कहकर देंगे कि आपने क्या कमाल कर दिया। माँ हो तो माँ मतो, ठीक है, माँ तो माँ, माँ ने जो किया माँ से, माँ से 10 कदम आगे बढ़कर किया, बाप ने 10 कदम आगे बढ़कर किया। जाके बाहर देखें, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो माशरा है, ये मैं कहता हूँ सदा शुक्र अदा करें और दुआ करें अल्लाह पाक हमें मतलब के वो जो बाहर जो वेस्टर्न कंट्री है तो माशरा बन के जो खराबियां जो पैदा हुई हुई है फैमिली के अंदर, दुआ कर अल्लाह करे वो हमारे यहाँ ना आ जाए। कि किस तरह मतलब के बच्चों को अलग कर दिया जाता है, बच्चे माँ बाप को अलग कर देते हैं, मतलब है ही नहीं कोई, इतनी मतलब मादा परस्ती है कि मैं इसको क्या अर्ज करूँ। हमारों को अल्लाह पाक करम करे। और हमने मैंने देखा है बाहर मुल्कों में कई फैमिली ऐसी हैं जो अपनी इस्लामिक और अपनी नेशन और अपनी कम्युनिटी वैल्यूज को संभाल कर बैठी हुई है। सम्मान भाई, ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, ये अल्लाह करे जो जो दुनिया में देखे सुने जो समझ में आ जाए, यानी वो खानदान जो मुल्क और बैरून मुल्क में है, जो अपनी इस्लामिक वैल्यूज को, अपनी कम्युनिटी वैल्यूज को, जो पॉजिटिव कम्युनिटी वैल्यूज हैं, जो अकदार हैं, जो हमारे तरीकेकार हैं, और जो हमारी नेशनल वैल्यूज हैं, बेसिक नेशनल वैल्यूज जो बहुत ज्यादा मतलब के शराफत पर और बड़ी खूबसूरती पर मबनी है, वो मुल्क और बैरून मुल्क जा भी है उन्होंने उसको बड़ा कंट्रोल किया हुआ है और शुरू से ही बच्चों की इस तरह की तरबियत हुई है। उनके बच्चे कभी माँ बाप को छोड़कर नहीं जाते, उनके बच्चे कभी माँ बाप को नजर नहीं मतलब आंखों से तकलीफ नहीं पहुंचाते, जबान से तो बड़ी दूर की बात है। उनके माँ बाप मुल्क और बैरून मुल्क जहाँ भी हैं अपनी औलाद के तालुक से सुखी हैं और खुश हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज बनाया, अपने बच्चों को आलिम बनाया, अपने बच्चों को नेक माहौल में रखा है और खुद भी नेकी और तकवे के माहौल को अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। माएं घर में नेकी और तकवे के साथ रहती हैं। उन्होंने वैसे कोई आजाद माहौल नहीं, मतलब बहुत सारा बचाने की कोशिश की है। मैं कहता कि हर कोई मुकम्मल तौर पर इस तरह करने में कामयाब हुआ है, लेकिन ये बात मैं उन फैमिलीज के लिए कर रहा हूँ जो उन्हीं कंट्रीज में रहती हैं और जिनको लगता है कि हमारी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो ये देखे कि जिनके साथ नहीं हुआ इन्होंने से कैसे क्या खूबसूरत अफाल किए थे, अमाल किए थे कि अल्लाह पाक की रहमत से वो बचे हुए हैं।
माशाल्लाह।
तो ये जो कुरान और हदीस के जो खूबसूरत पैगाम आते हैं ना
जी,
बच्चों की तरबियत, जैसे वो मशहूर हदीस है, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, एक नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाएं, फिर देखें बरकत कैसी नसीब होती है। सहाबाए किराम अलैहिम व रिदवान का इश्क व मोहब्बत उनके रगों पे में डालें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इनके मतलब के रगों पे में डालें। मैं आपके सामने के ये मैं नॉर्वे में बैठा हूँ, नॉर्वे में जैसे ये किताब है इस्लाम की बुनियादी बातें, मदनी मुन्नों के लिए बुनियादी इस्लामी मालूमात तो मुश्तमिल ये किताब, ये देखिए ये यही है। मैं नॉर्वे में फैजान मध्य बैठा, यहीं से मुझे इस्लाम ने किताब उठा के दी।
माशाल्लाह।
अब ये किताब हमारे घर में हो और हम इसे पढ़ें, देखें, बच्चों को पढ़ाएं, इसके ट्रांसलेशन ले लें, मक्का मदीना हो जाएगा। जी
मरहबा। हुजूर ये बताएं कि ये खानदान की यूनिटी और इत्तेहाद का शिरादा कैसे बिखर जाता है, यूनिटी कैसे खत्म हो जाती है, किस तरह से ये इत्तेहाद पाश पाश होता है, क्या वजूहात होती हैं, इसके क्या रीजंस होते हैं कि खानदान एक साथ रह नहीं पाता।
नफ्स और शैतान की शरा, शैतान चाहता है ये कि तुम्हें अदावतें डाले। शैतान का काम अदावतें डालना है, झगड़ा पैदा करवाना है, ना इत्तफाकी पैदा करवाना है, और ये हो जाता है। एक दूसरे की गीबतों में पड़ जाएंगे, एक दूसरे की बदगुमानियों में पड़ जाएंगे, बिला इजाजत शरई एक दूसरे के पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करेंगे, घर की बातें बाहर करेंगे, बाहर वालों को बिला जरूरत घर के मामलात में इन्वॉल्व करेंगे। इस तरह ये मामला खराब हो जाते हैं। अगर जो चीजें मैंने बयान की हैं आप इसके दूसरी तरफ जाएं, इसके जो आईने का दूसरा रुख वो करें कि हमने ये नहीं करने, तो देखें उस घर में इंशाल्लाह मोहब्बत प्यार इत्तफाक ना रहे। तो कहे कि जब घर की बातें बाहर करेंगे तो ये प्रॉब्लम आता है, घर की बातें बाहर ना करें, बिल्कुल घर की चाहे बेटी हैं चाहे बेटे हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे दामाद हैं या बहू हैं या जो भी आप, ये क्लोज फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूँ, बच्चों की भी यही तरबियत होनी चाहिए कि घर की बातें बाहर ना करें, बिल्कुल घर की बातें बाहर ना करें। अगर खुदा ना खासा कोई आपस के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली होकर कोई अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की जा सकती है, तो करके क्लियर कर रहे हैं। दिल में बुग्ज ना रखें, दिल में कीना ना रखें, दिल में अदावत ना रखें, और अल्लाह पाक से हर हाल में डरते रहें, इबादत भरा माहौल बनाएं, नीकियों भरा माहौल बनाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। वो कहते ना कि यार, कोई कहते यार मैं इसको बर्दाश्त, क्या पता वो भी आपको बर्दाश्त कर रहा हो, खाली हम तो नहीं बर्दाश्त कर रहे होते, कोई हमें भी तो बर्दाश्त कर रहा होता है यार।
सब हमने अपने आप को सिलेक्टिव बनाया हुआ है। मैं तो एक आ रहा था कि आप इस पॉइंट को भी आप जो है वो डिस्कस करें कि मुझे तो लगता है कि ख्वातीन का बड़ा किरदार होता है यूनिटी पाश पाश करने में, घर को मतलब ख़ानदान को इसका शिराज़ा बिखेरने में, इसको अलग अलग करने में, तोड़ने में ख़वातीन का जो है वो एक किरदार होता है। और इस पर मैं आपको एक फैक्ट बेस्ड बात जो है वो बताता हूँ जो मेरे नॉलेज में आई कि एक जो है वो किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, तो बाप का जो यूं बोले बिजनेस था वो हिल गया पूरा, यूं बोले उनका निज़ाम सारा मतलब डिस्टर्ब हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो हो गए। तो उस बच्चे की नानी ने उस बच्चे की माँ के सामने कहा कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है इसने तो अपने बाप का भट्ठा ही बिठा दिया है। अच्छा, ये बातें बोली जा रही हैं और उसकी माँ के सामने बोली जा रही हैं और उसकी माँ बर्दाश्त कर रही है। सवाल ये है, बात ये है कि अगर यही बात इस बच्चे की दादी ने बोली होती तो फिर बर्दाश्त होती? तो हमने अपनी बर्दाश्त को भी सिलेक्टिव रखा हुआ है कि यहाँ बर्दाश्त को ऑन करना है, यहाँ बर्दाश्त को ऑफ करना है, इधर बर्दाश्त करना है, यहाँ बर्दाश्त जो है वो नहीं करना। क्या कहते हैं इसमें आप
सलमान भाई? इन तमाम तर गुफ्तगु को जो आपने, चाहे वो खवातीन के ताल्लुक से करें, मैं नहीं कहता खवातीन इसमें आगे नहीं है, लेकिन सच्ची बात है कि मर्द भी ज्यादा पीछे नहीं है, ठीक है? वो भी बाहर निकल के जो बातें करते हैं, खुद अपनी बीवियों की फाइल खोलते हैं,
अल्लाह की
पनाह। अगर बीवी अपने शोहर की फाइल खोलते हैं तो कौन से ऐसे मर्द हैं जो बाजों का आपको मिलेंगे जो अपनी बीवियों की फाइलें खोलते हैं, माशाल्लाह। तो ये है, अगरचे औरतों में ये मसाइल हैं और अल्लाह पाक तौफीक दे, मैं इन सबका एक जवाब अगर आपकी इजाजत अर्ज करूँ कि अगर एक चीज को कंट्रोल कर ले तो शायद बहुत सारे काम कंट्रोल हो जाएंगे, इजाजत है तो मैं अर्ज करूँ?
बिल्कुल इजाजत है सर,
ठीक है। उस एक चीज को कंट्रोल करना है, वो चीज क्या है? समा
कमाल है,
एक चीज को कंट्रोल करिए, ये झगड़े कराते तकरीबन मसाइल इसके हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, बोलना भी एक है नहीं बोलना है, ये तो तवज्जो ही नहीं है हमारी, यही मसाला है ना,
यही है।
वो जो आपने जो मिसाल जो अभी आपने जो बयान किया, तो उसने कहां से रिकॉर्डिंग चलाई थी? जबान चलाई थी,
जबान ही चलाई थी,
जबान ही चलाई थी, रिकॉर्डिंग नहीं चलाई थी यार, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड जरा सुन तो लो, और जब वो रिकॉर्डिंग भी किसी की जबान से निकली हुई होगी, मन समाता न जा हदीस है, जो चुप रहो से न जा, हदीस मौजूद है कि जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता उसको जो अच्छी बात करे वरना चुप रहे। यानी हमें इतना सेंस भी तो नहीं है ना, अच्छी बात क्या, कौन सी बात मेरी अच्छी है, कौन सी बात मेरी बुरी है। बस वो जो इतनी खूबसूरत बात अमीर सुन्नत फरमाते हैं ना, इन पर करो रहमत नाजिल करे सलामती दे, कि 32 सिपाहियों का पेहरा तोड़कर और 2 होंठों का फाटक तोड़कर जब जबान बाहर निकलती है, फायर करती है ना, दिल गुर्दे फेफड़े दिमाग सब हिला जुला कर छन्नी छन्नी करके रख देती है।
अल्लाह की पनाह।
बाद मुझे मिले, उनका अपने ऊपर एक कंप्लेन है यार, क्या करे बोला ही नहीं जाता। मैं इनको कहता हूं खुश नसीबो बोला नहीं जा रहा यार,
वाह।
बाज को ना बोलना है ना, वो अंदर कुड़ रहे होते हैं, बस मेरे को बस बोलना आ जाए, मेरे नहीं आए बोलना, ऐसा क्या बोलना है? बोलना आए ऐसा कि जो अल्लाह और के रसूल की रजा के मुताबिक हो, बोलो कितना बोलना है। लेकिन वो जो है कि यार बस मैं जबान ही चली हो ना, मैं जो जवाब देता ना, वो भाई अल्लाह का शुक्र है मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, جس کانٹیکسٹ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اچھا ہے کہ بول کر بندہ پچھتاتا ہے, نہ بول کر تھوڑی پچھتاتا ہے. اب جو پچھتا رہے ہو نا, کاش سے میں بول دیتا. یہ وہ پچھتاوا ہے کہ یہ وہ پچھتاوا نہیں ہے جس پر آپ کو بہت زیادہ آپ پھنس جائیں گے. آپ بول چکے ہوتے تو اب کہاں سے واپس لیتے آپ. تو یہ جو جس کو اللہ پاک نے ضبط دیا, صبر دیا, خاموشی جس کو نصیب ہو گئی نا, یقین مانے جو خاموش رہ لے, برداشت کر لے, نہ رسپونڈ کرے. میں عموماً کہتا ہوں کہ بعدوں کا ایسا واٹس اپ یا ایسے کوئی میسج آ جاتا ہے جس سے بالکل دل دماغ ہل جاتا ہے نا, بھائی یہ اس سے مجھے کیا بول دیا, فوراً ریپلائی. میں کہتا ہوں اس پر ریپلائی نہ دیں, غلطی کر لیں گے آپ, یہ آپ کا ریپلائی کا ٹائم نہیں ہے. ریئیکشن میں, ریپلائی میں اور رسپونڈ میں فرق ہے. آپ ریپلائی کر رہے ہیں اور یہ ریپلائی ہے, ریئیکشن ہے, یہ رسپونڈ ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. ابھی اب نہ کریں. جب بھی کوئی ایسا صدمہ یا کوئی ایسی آپ کو ہٹ کرے یا کوئی آپ کو اللہ نہ کرو ایسی آپ کو گفتگو کر دے یا آپ کو سامنے کوئی ایسی بات کہہ دینا, کائنڈلی ریکویسٹ ہے, یہ میں ایک بات کر رہا ہوں, اس وقت کوشش کریں تھوڑا سا رک جائیں, کول ڈاؤن, سمجھیں مجھے بولنا کیا ہے. کیونکہ وہ بات جو آپ کے کان کے ذریعے آپ کے دل و دماغ پر اتری, ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے وہ کچھ نکال دے جو آپ کا لیول نہیں ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, جو آپ تو فتنہ ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. رک جائے نا, ہو سکتا ہے غصے میں کچھ نکل جائے, خدا نہ کرتا گھر ہی ٹوٹ جائے, یا کوئی ایسا جملہ نکل جائے, اللہ نہ کرے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. سو کائنڈلی اسٹاپ, اسٹے, تھنک, صبر. اللہ مجھے بھی توفیق, اللہ آپ کو بھی توفیق, جو میں کہہ رہا ہوں.
آمین, آمین.
کہ مانے یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اگر میرے اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی وہ سب کے سب, اور جو دین کا کام کرتے ہیں وہ, اور جو اس میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, میں تو سب سے بات کر رہا ہوں, ہمیں اس نے بہت تکلیف دی ہے. بندہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا بولنا, بولنا بھی کہ نہیں بولنا. یعنی قیامت کے دین ہمارا بولا ہمارے سامنے لایا گیا, ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب تعالیٰ کے حضور, دکھا تو جا رہے نا. تو یہ درخواست یہی ہے کہ اللہ کرے کہ بتائیے, جو بھی آپ نے جو گفتگو کی نا, خاندان بکھر گیا, ٹوٹ گیا, ٹوٹ گیا, آگے پیچھے ہو گیا, گھر بکھر گیا, بھائی جدا ہو گئے, بہنیں جدا ہو گئیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ماں باپ نے بچوں کو, اس میں میجورٹی جو پرابلم آئے گا, میجورٹی پرابلم آئے گا, مس یوز, اس کا مس یوز ہے. اور مس یوز ہونا, چاہے آپ کے ہاتھ میں قلم ہے اس کو آپ مس یوز کریں گے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کا بھی مس یوز کریں گے, آپ نیٹ پہ جائیں اس کا مس یوز کریں گے, آپ کے پاس ٹائم ہے اس کا بھی مس یوز کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ مس یوز, غلط استعمال, نہ درست استعمال, یہ بھی ایسا لگتا ہے بعض اوقات ہماری طبیعت کا اور ہماری عادتوں کا حصہ بن گیا ہے. یہ درست ہو جائے تو بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی.
ایک میرا جو ہے وہ جاتے جاتے ایک سوال کا اور بھی جواب دے دیں کہ اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ میری خاندان میں عزت نہیں ہے, چاہے کسی مرد کو یا چاہے کسی خاتون کو, اگر یوں لگتا ہے کہ میرے خاندان میں عزت نہیں ہے, تو اسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بس یہ آخری کوسچن ہے جی.
عزت نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا وہ کس آپ کس پہلو پر بات,
لوگ آؤ بھگت نہیں کرتے, لوگ پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتے, اپنی دعوت میں بلانا پسند نہیں کرتے, یوں بولیے کہ اپنے معاملات میں حصہ دار بنانا جو ہے یہ پسند نہیں کرتے, الگ تھلگ رہتے ہیں, کنارہ کشی اختیار.
جملہ ہے, اگر ایک جملہ ہے پتہ نہیں وہ یہاں آپ کی گفتگو سے پر سوٹ کرے گا نہیں کرے گا, عزت مانگی نہیں جاتی, عزت کمائی جاتی ہے. اگر کہیں عزت نہیں ہے تو پہلے تو یہ ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ آخر میری اگر عزت نہیں ہے تو کیا اس کا سبب میں خود تو نہیں ہوں. بعض اوقات آدمی کا اپنا کریکٹر, اس کا انداز, اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں اس کی وہ رسپیکٹ کر پاتے اس انداز پر جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری رسپیکٹ ہے. اور بسا اوقات یہاں کچھ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ وہ غریب ہے یا وہ اس کا اسٹینڈرڈ اتنا عمدہ نہیں ہے یا اس کی دیگر چیزیں ہیں, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہم نے اپنے کچھ ایس او پی سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہم نے کس کو عزت دینی کس کو عزت نہیں دینی. لیکن جو صاحب عزت ہے, جو صاحب قدر ہے, جس کی عزت کرنے میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کی عزت کیوں نہ کی جائے, اس کی قدر کیوں نہ کی جائے, اس کو اہمیت کیوں نہ دی جائے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے غور کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کا کوئی شاید میری دانش ناقص عقل میں اس وقت کوئی ایک پرٹیکولر جواب آ نہیں رہا ہے کہ عزت ہے, عزت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. پرابلم ان کا ہے کہ جو عزت دے نہیں رہے, یا یہ پرابلم اس کا ہے جس کو عزت مل نہیں رہی. یہ پورا ٹاپک ہے کہ بعض اوقات لوگ عزت کس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, بعض اوقات عزت نہیں کر رہے ہوتے لیکن عزت والا انداز دے رہے ہوتے, دراصل اس کی عزت نہیں ہے, اس کا خوف, اس کا ڈر ہے
شر سے بچنے کے لیے.
اب یہ عزت کہاں سے ہو گئے؟ اس کو تو لگتا ہے کہ میرے مطلب میری تو جناب
بھگت ہو رہی ہے,
جہاں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے نہیں ہوئے, ان کو پتا ہے یہ کھڑے نہیں ہو گئے تو یہ ادھر رہیں گے نہیں. تو اب بعض اوقات آدمی کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ڈر کر, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور ڈر کے مارے اس کا ان کا جو ایکشن ہے وہ لائک اے ریسپیکٹ ہے, بٹ ریسپیکٹ نہیں ہے, یہ وہ عزت نہیں ہے, وہ اس کے شر کا خوف ہے کہ یار یہ نقصان پہنچا دے گا. تو اب ایسی عزت کس کام کی؟ یہ درخواست تھی.
اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے, علم و دانش کے موتی یہاں سے چنے, علم و دانش کے موتی یہاں سے چنے.